राधाकुंडम गिरिवर महो राधिका तो जस्तृपयासी गुरु वैष्णवेभ्यो नमः नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिति अंगश्यामलिं छटा विरहितो मंदिर जातं जागुलरोति संगीतदतं पट्टंदरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्गमाभिरामङ्गरं राधाकुण्डलेशितोद्यानं तवैवास्मि तवैवास्मि मैं सर्वप्रथम अपने परमात्म गुरुदेव नित्य लीलावन विष्णु पास किस्मत भक्ति प्रज्ञान के सर्वस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि श्रद्धांजलि पुष्पा अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात श्री राधारमण जी के गोस्वामी श्री विश्वंभरनाथ गोस्वामी जी के चरणों में भी मैं अपनी पुष्पांजलि श्रद्धा पुष्पांजलि जैसा कि विश्वंभर गोस्वामी ने बतलाया उनके सुपुत्र श्री पद्मनाभ गोस्वामी ने बतलाया यह उत्सव पिछले कितने 100 साल हो गए तब से ये चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे उसमें वृंदावन में वन जंगल वो अक्रूर घाट में रहते और वहाँ से नीलकला में जाते चारों तरफ वन ही वन जंगल जंगल था। उस समय के बाद से जब आए अधिक दिन नहीं रहे परिस्थितियाँ उनको वहाँ नहीं रहने दी परिस्थिति और क्या यहाँ यदि रहेंगे तो उनका यह भाव स्पष्ट हो जाएगा ये कृष्ण ही है तो राधा भाव का साथ नहीं कर सकते इसलिए छल बहाना करके वो लौट गए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गया राधारमण के गोस्वामी लोग इस उत्सव को प्रतिवर्ष मनाते हैं और नवद्वीप से भी नवद्वीप धाम से बहुत से भक्त लोग आते हैं उसी के संबंधित कीर्तन इत्यादि करते हैं और प्रोसेशन भी होता है नवकल नगर संकीर्तन भी होगा उनके साथ में और उनकी स्मृतियाँ हरी भरी करने की चेष्टा करेंगे वो लोग। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन यानी उनका तत्व क्या है आशय एक आदमी दरवाजा के पास में रहे उनको कहते जैसे ऊपर में बालकनी में सब जगह है यू कैन कम ऑन द फ्लोर ऑफ टेम्पल वी आर ऑन द टेम्पल फ्लोर कहीं आएंगे तो उनसे कह दिया करेंगे ऊपर काफी जगह है ऊपर में है इधर है चैतन्य महाप्रभु जी श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को अप्रकट करने के पश्चात चिंता करने लगे अहो मैंने संत दास सब के बात सुन ल मधु और भाष्य करुण रौद्र भयानक विभत्स आदि द्वादश रसों को मैंने आस्वादन किया। आस्वादन करके भी मैं तृप्त नहीं हुआ। मैं प्रेम के विषय मैं प्रेम का विषय हूं और प्रेम की के आश्रय भक्त लोग हैं। उन भक्तों में ब्रजवासी भक्त, उनमें भी नंद जसोदा प्रभृति और उन लोगों सब लोगों में भी गोपियां सब शेष, उन गोपियों में भी चंद्रावली प्रभृति, उनमें भी ललिता आदि विशाखा सखियां और उन लोगों में भी श्रीमती राधिका जी परम श्रेष्ठ हैं। मेरा उनके प्रति बहुत ही प्रेम है, उनका भी मेरे प्रति प्रेम है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से मैं ये देखता हूं मुझे देख करके श्रीमती राधिका पागल नहीं हो जाती हैं। उनको दिव्योन्माद, प्रेम वैचित्र आदि महा दशाएं उपस्थित हो जाती हैं, मुझे नहीं होता। मैं देखता हूं हमारी प्रेम के गुरु श्रीमती राधिका जी हैं, मुझे देखकर के पागल नहीं हो जाती। सारा जगत मुझे देखकर आनंद से विभोर हो जाता है, किंतु मैं राधिका जी को देख करके प्रेम में विभोर हो जाता है। मेरी छाती सुशीतल हो जाती है। मैं जगत के सब लोग मेरे माधुर्य का आस्वादन करते हैं और श्रीमती राधिका जी का माधुर्य का आस्वादन मैं करता हूं। मेरी बंसी गीत सबको स्तब्ध कर देती है, किंतु राधा की मधुर वाणी और मेरी बंसी को भी स्तब्ध कर देती है। जो बंसी ब्रह्मा शंकर इत्यादि को भी प्रेरणा देती है, स्फूर्ति प्राप्त कराती है। देवताओं की स्त्रियां वनिताएं अपने पति के गोद में विमान में ही वहीं पर गिर जाती हैं, जिस बंसी ध्वनि को सुन करके। वो बंसी हमारे हाथों से गिर जाती है। वेणु करान्यपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं चपीत वसनम वज्राग सोन जस्या कटाक्ष सर्गात विमुच्य तस्वतं राधिका परिचरामि पदारशे। वो वंशी भी गिर जाती है। वो अकित वसंत जिसको देख करके जगत मुग्ध हो जाता है और वो पित वसंत भी राधिका को देखने से गिर जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि इस सब विषयों में राधिका जी हमसे श्रेष्ठ है, किंतु फिर भी मेरे अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको देख करके ये सारी गोपियां विशेष करके राधा जी पागल और दिव्योन्माद ग्रस्त हो जाती हैं। मेरे अंदर में क्या चीज है उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर और मधुर रूप में परिवेशन किया गया है। ऐसा सोच करके कृष्ण जगत को एक अद्भुत दान देने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए। उसी को बतलाया गया अनर्पितरण कलो समर्पयी तुम उन्नतोजल भक्ति से हम हरिहपूर सुंदर ज्योति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे तुम्हें सचिन। अनर्पित चरण चिरा बहुत दिनों से ब्रह्मा का एक दिन का समय हो गया, बहुत दिनों से जो प्रेम जगत को नहीं दिया गया उसको समर्पित तुम उनको देने के लिए बड़े आतुर श्री कृष्ण ही सोच करने सोचने लगे कैसे इस प्रेम को दिया जाए। अद्भुत पार्थिव मधुर भाव उसमें भी मंजरी भाव, क्यों क्या देने के लिए अनर्थित चरिन चिरात समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसान। उन्नत उज्ज्वल जो रस है माधुर्य रस है, स्व भक्ति श्रियं, स्व मने निजस्व भक्ति प्रेमा भक्ति लादनी शक्ति स्वरूप शक्ति रागी उनकी जो मेरे प्रति जो प्रेम है उसकी क्या श्री शोभा। अर्थात शोभा क्या है, राधिका प्रेम एक कल्प तरु है और उसकी पत्तियां और मंजरियां उसकी शोभा है। जब हवा में मंजरियां झूलती हैं इधर उधर लहराती हैं तो लता बड़ी अच्छी सुंदर दिखती है। यदि पत्ते और उसकी वो न रहे मंजरियां तो लता नहीं सुंदर दिखे, नंगी दिखेगी। सुंदर केवल एक लकड़ी सूखी हुई लकड़ी की बात। तो वो इस प्रेम को माधुर्य प्रेम के उन्नत उज्जवल रस के भी भाव पर भी अभाव के भी कामात्मिका नहीं, कामात्मिका में भी संभोगात्मिका भी नहीं। किस चीज को तत्त इच्छा भाव में भावोल्लास रति को देने के लिए, भावोल्लास रति मैंने ये मंजरी भाव देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु है। कौन नौमी कृष्ण स्वरूप राधा भाव दूति सबलित कृष्ण स्वरूप जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ आप देख रहे हैं वे इस जगत में पधारे। यही चैतन्य महाप्रभु का अपना स्वरूप कृष्ण स्वरूप किंतु राधा भाव कांति द्वारा दे दीप्यमान जगत में पधारे। इसलिए पधारे अभी बतलाया स्वभक्ति से हम अपनी भक्ति की शोभा स्वरूप मंजरी भाव देने के लिए जगत में पधारे। विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के व्याख्या से ही ऐसा ही प्रतीत होता है, उन्होंने स्पष्ट रूप में यह घोषणा की। फिर भी चैतन्य महाप्रभु का यदि और स्वरूप वर्णन करना है तो स्वरूप दामोदर के कच्चे के अनुसार में राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनिस्मात् एकात्मा माम भूकुरा देवेदं गतौतौ चैतन्याख्या प्रकट मधुना तद्वयं चयक्तिमाप्तम राधा भाव द्युति सबलितम नौमि कृष्ण स्वरूप। यहाँ देवी कृष्ण स्वरूप राधा या प्रणय विकृति, राधा राधा क्या है, राधा प्रणय विकृति। प्रणय विकृति किसकी प्रणय विकृति है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण की प्रणय की विकृति है। तात्पर्य क्या है, कृष्ण की प्रणय विकृति क्या है, राधा जी की प्रणय विकृति तो जानते हैं, उसमें बतलाया गया है राधा या प्रणय महिमा की दृशो वा नैवा अस्वाद्व जेनाद्भुत मधुरमा की दृशो वा मदीय सौखन चमदन भवत की दृशो वित्ति लोभा तद्भावाद्या समझनी सची गर्म सिंह। ये तो बतलाया गया किंतु कृष्ण की प्रणय विकृति क्या है, कृष्ण की प्रणय प्रणय कौन है, यह राधा जी स्वयं ही है प्रणय। कृष्ण के जितने प्रकार के भावोद्गम होते हैं भावोल्लास होते हैं यह सब चैतन्य महाप्रभु के होते हैं। राधिका के दर्शन मात्र से उनके सान्निध्य भाव से होते हैं, अन्यथा नहीं होते, अन्यथा वो निर्विशेष ही हो जाए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी, ये प्रणय की विकृति को ही लादिनी शक्ति कहते हैं। अर्थात वह प्रणय विकृति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है तो विकृति किसकी, कृष्ण के प्रणय की। कृष्ण का प्रणय किसको कहते हैं, जरा अच्छी तरह से समझो। श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव रति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये कृष्ण के भाव हैं या कृष्ण के प्रति भक्तों का भाव है, आश्रितों का भाव है, आश्रय जाति का भाव ये है श्रद्धा। कृष्ण के अंदर में भी माता पिता और गुरुजन और गोपियों के प्रति श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति है, किंतु यहाँ पर इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि हम लोग विषय जाति नहीं है, आश्रय जाति है, इसलिए सब समय आश्रय जाति का भाव ग्रहण करना। इसलिए कृष्ण के प्रति श्रद्धा देखो, किसकी श्रद्धा, भक्तों का, आश्रय जाति जो ब्रजवासी लोग हैं, जो उनके परिकर हैं उनके, तो क्या कारण
प्रणय।
यहाँ पर हमने कहा कृष्ण के प्रति जो प्रणय है, किसका प्रणय है, अंतिम मुक्त प्रग्रह वृत्ति से अंत तक जाता है राधा, उसकी सीमा है। राधा जी का जो प्रणय है यही प्रेम कहलाता है, और यही प्रेम जो है हमारा प्रयोजन है। कृष्ण प्रयोजन नहीं, कृष्ण का प्रेम। ये जो प्रणय है ये प्रेम से भी और इसका उत्कर्षित प्रेम, स्नेह, मान, ये प्रणय उससे भी, ये प्रणय किसके लिए प्रयुक्त है, मदनक्ष भाव तक के लिए। तो ये प्रणय की विकृति है। लादिनी, उसी को लादिनी माता, इसी के द्वारा कृष्ण आनंदित होते हैं। यह लादिनी रूपी जो प्रेम है, यह प्रेम केवल गुण नहीं है, गुणी है, ऐसा समझो,
व्यक्ति
प्रेम भी व्यक्ति भी है। ये ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को नचाती है, कृष्ण भक्तों को नचाती है, अपने भी नाचती है, सबको उल्लासित करती है, स्वयं भी उल्लसित होती है, व्यक्ति है, कोई गुण नहीं है। कृष्ण की शक्ति गोपियां है, मैं तत्व गुण है, शक्ति एक तो गुण है, ये सर्वशक्तिमान है। तात्पर्य क्या, जगत के लिए तो ऐसा कहेंगे जैसे उनमें शक्ति है, किंतु इन शक्तियों का भी विकास कृष्ण के अंदर में अंतरंगा शक्ति और बाहर में क्या है, राधिका, और उसके कोटि कोटि दिव्य ये काय व्यूह। इसलिए वहां पर गुण और गुणी दोनों का व्यक्तित्व भाव, व्यक्ति भाव, दोनों व्यक्ति हैं जो कि काम ये सब क्रिया करते हैं। इसलिए वहां पर प्रणय विकृति ही राधिका जी स्वरूप है, ये तात्व प्रणय विकृति लादिनी
शक्ति रस्मादिकास्मात शक्ति रस्मात
एकात्मा नाम अपनी भूपुरा देवी तम गौती एकात्मा नाम एक ही थे, एक ही हैं, कौन, कृष्ण विशेष रूप, किंतु राशस्थली ने इसी दिव्य दिव्य वृंदावन के राशस्थली बंसी बैठ के जब प्रकट हुए तो देखा जा अकेले रसास्वादन नहीं, हमारा चित्त कल्लादन नहीं हो रहा है, आनंदित नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को अलग से प्रकाश किया। उस राजा बाएं अंग से एक श्रीमती राधिका निकली और वो उनकी शक्ति, और फिर दाहिने रूप से कौन निकले, गोपीश्वर महादेव, वो दर्शक दर्शक हुए, और ये दोनों विषय आश्रय उन्हीं का नित्य हुआ, काय व्यूह इत्यादि प्रकटित हुए, और गोपीश्वर जी साक्षी रहे, उसके एक साक्षी भी होना जरूरी है। इस तरह से एकात्मा ना वो भूपुरा देभेदं गतौ, तो वे एक थे फिर दो हुए, और दो से अधुना
वर्तमान कलि युग में,
वर्तमान कौन लिख रहा है, चैतन्य चैतन्यमृत में या महाप्रभु के परिकर स्वरूप दामोदर लिख रहे हैं, कट जाना अधुना, अभी उनके साथ में मैं हूं, वही चैतन्य महाप्रभु एक, वही एकात्मा नाम को भोग पुरा दे भे गंग चैतन्य आख्या प्रकट अधुना तद्व यम आप। ये राधा और कृष्ण के जुगल प्रकाश, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है, राधा स्वरूपतः कृष्ण है और राधा की दूति और भाव द्वारा सुबलित है और जगत को वही कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का यह प्रयोजन था, यदि नहीं रहता तो यह धन्य कली नहीं होती और वो सब कुछ धरा रह जाता, अद्वैताचार्य भी धरे रह जाते जिस काम के लिए उन्होंने बुलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति तो थी किंतु भक्ति रस नहीं था, साधन भक्ति थे। रामानुज का, आचार्य का, मध्वाचार्य का, उनकी मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादित, ये चारों वैष्णव आचार्य थे और भक्ति का पूरा प्रचार किया किंतु भक्ति रस का प्रचार नहीं किया। भक्ति रस का कौन प्रचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रयाग में कहा भक्ति रसामृत सिंधु अखिल अतल पारापार सिंधु है, उसका एक बिंदु तुमको चखाने के लिए ये मैं बतला रहा, उसका निरूपण किया एक बिंदु का। और वो एक ऐसा बिंदु है जिसमें सारा विश्व डूब करके सारा बहुत हो सकता है, हुआ भी। फिर उनकी कृपा से उनका यह प्रेम स्फूर्ति प्राप्त किया रूप गोस्वामी के हृदय में, जस स्फूर्ति, उन जिनकी स्फूर्ति से रूप गोस्वामी जी ने भक्त स्वामी सिंधु उज्ज्वल निर्मन विदग माधव ललित माधव इत्यादि कितने नाटक और कितने क्या क्या ये सब जिन्होंने रथ यात्रा के समय में रस का आधार वो दो जो दो श्लोक हैं,
जय
कुमार हर, और फिर उसके बाद
स्वयं
सहचरी, ये सब को रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। ये सब कहाँ के भाव थे, महाप्रभु जी ने एक बिंदु दिया था उस बिंदु में ही ये सब भरे, तो ये सब उन्होंने प्रकाश किया। ये चैतन्य महाप्रभु का यही उनके आने का उद्देश्य था। वृंदावन में आए किंतु देखा गोवर्धन गिरिराज में मेरे भाव उदित हो जाते हैं कि मैं कृष्ण इसको धारण किया था, गोपियां मेरी सेवा करती थी, इसलिए इसके डर के मारे जो अधिक दिन रहने से हमारा यह भाव व्यक्त हो जाएगा कि मैं कृष्ण हूँ और जिस काम के लिए है वो काम होगा नहीं, इसलिए उसको गुप्त रखे और जल्दी से बहाना बना करके यहाँ से काशी, यहाँ से प्रयाग रूप गोस्वामी को एक बिंदु रस का देकर और फिर वहां से फिर चले गए काशी में सनातन गोस्वामी को उन्होंने अविधे
संबंध
अविधे प्रयोजन के शिक्षा देकर के फिर वहां से संक्षेप में अरण्य महाराज ये सोच
बुलाता हूँ ऐसे काम लग जाते हैं
कुछ परिस्थिति उस समय वही पता था जब 10 तारीख का भरा था क्या बजे आप पहुंचोगे
सात बजे के करीब पहुंच गए
सुबह कार्यक्रम के वजह
से 7 से लेकर के 8 लोग तक हम लोग
वापस आने के
पर मथुरा में आए।
तो आप कह रहे हैं किसी को लाने के लिए बुलाने के लिए कुछ था
वहाँ के गांव वालों को ये आपके समझना था राधा को मैं कहता था
नहीं तो 7 और 8 तो जल्दी हो जाएगा अगर हो दोपहर का करीब 11 बजे हो गया तो जैसे यहाँ से जिला अध्यक्ष या पार्टी उनको ले चलता हुआ
कुछ ऐसा करें किंतु हम
अगर आप पक्की बताओ तो जैसे वहाँ का वो जाट है उसको बुला
लूँ
जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के
लक्ष्मण
10:30 और हम लोग वैसे ही 10 तक पहुँचेंगे और 1 बजे तक
ठीक है। थोड़ा बहुत गांव वालों के बीच में बुलवा देंगे, आप गांव वालों को बुला कर रखिएगा
ठीक है। गांव वालों को हम बुला कर ये बात
पक्की रही
तो आगे 7:09:10
पक्की रही
कोई गड़बड़ी
नहीं पक्का
ये काम जैसे
मैं ये काम ये मैं आपके लिए कराऊंगा काम
हाँ ये काम पूरा हो जाएगा हमारा मन
मेरी जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी नहीं है मेरी
जिम्मेदारी मैं सब करते
मैं यहाँ से जिला अध्यक्ष है भाजपा के उनको लेकर जाऊँगा जो विधायक है उसी क्षेत्र का ही है उसको बुला लूंगा बुला के बात
करेंगे
जाट है वो पुरात पास जाट है वहाँ
अच्छा
जाटों को ही लेकर जाऊँगा मैं
तो हम लोग देख से जाएंगे 10 बजे जाएंगे और 12-1 बजे 2 बजे और इसी बीच
उसकी रास्ता कहाँ से है ये जमुना पार किया जमुना पार करके
सीधा और यदि कार और जाएगी तो वो पल्ली पार से उधर से होकर
जमुना पार करके
लक्ष्मी नगर
है
और जो बसा का रास्ता है
आप पूछने से मालूम पड़ जाएगा
हमने लिख कर के रखा भी है वहाँ
कॉर्नर में गाड़ी पहुँच जाएगी वहाँ
गाड़ी पहुँच
जाएगी
आपके किसी का कोई मोबाइल नंबर है अगर किसी का कोई संपर्क तुरंत करना
पड़ा
मोबाइल नंबर
But any creeper has so many leaves and manges. So when the creeper has leaves and manges, at that time it very beautiful. If there are no leaves, no undrips, then the creeper appears to be naked, not so beautiful. So the undrips, they are the beauty of the creeper. Therefore, the conclusion is, Svabha Krishna means the Chaitanya
can't give
the undrips. He can't give majority mood. But this majority praying has two aspects, Sambhogichamaya and Tathagvabichamaya. He is not come to give Sambhogichamaya. He came to give Tathagvabichamaya. And among those who have Tathagvabichamaya, those who have vows of sovereignty, they are both mantras. So this was the very special contribution of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So the Swami Gautama Goswami, in his Pajaja, in his notes, then he explained, Radha Krishna Panayavikriti Nadi Shakti Rasa. This first line describes the identity of Srimati Radhika. Who is Radhika? Krishna Pranaya Vikritiya. She is the modification of Krishna's Pranaya. What does that mean? Srila Gurudev explained that Radharani's Radha Pranaya has been described in another verse, Sri Radhaya Pranaya Mahima Tidisho Vahyapa This is Radhika's pranaya. But what is Krishna pranaya? Krishna's pranaya is called Radhini. It is his own internal potency and it gives all ananda to him. Sraddha, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav. This is Krishna's mood, or is it the mood towards Krishna? This is the mood towards Krishna. It is Ashray Jati Bhav. It refers to love of his devotees, Vrijvasis. So that is what we describe here. But here, by Mukta Prabhupada Hati, that means the conception of liberated souls, we will see the highest interpretation of any word. Then this word pranay refers exclusively to the Mahabhav of Sri Mati Radhika. This is Madanaki Mahabhav. So here the word pranay has been used. It is not referring to Sneha Mala Pranay, this stage of love. But here the word pranay refers specifically to Radhika's Madanaki Mahabhav. This type of praying is not amrita. It is not that it does not have form, but rather it's vyakti. It is manifest as a person. It is guni, has many qualities. Even though gopis are Krishna Shakti, they have form. So this Nadini Shakti is inside Krishna. But when it manifests outside, when it is vyakta, at that time it's called Vrishivam Nadini, Srimati Radharani. So Srimati Radhika, she is Krishna Pranaya Vikritiya. Radha Krishna Pranaya Vikritiya Lali Shakti Rasna Eka Mano. His Swami Dhanapada Swami is using the word Eka. Eka means one. Who was that one? Krishna is that one. When Krishna, the Lord of Bhakti Bhat, was wondering to himself, how can I find another? How can I find happiness? At that time, that Krishna who is one. Oh, Eka Manavati Bhuvi Pura Deha Veda Dato. That one person manifested two bodies. In other words, Srimati Radhika manifested from the left side of Krishna and vikas with the Ra, Anura, Chitha, ran towards him. Therefore, she called Radha. And all the other copies of Raj, they are Vikaya Vivarup, all manifestations of that Srimati Radhika. So, Radha Krishna Pranayam Kriyam, Lagi Chatya Asmat, Eka Pranayam Kriyam Kuro, Deha Veya Mithokto, Chaitanya Kyam Paratam Adhuna. Even though Krishna is one, he is manifesting two. That means Radha Krishna to taste Lila Rasa. But now, these two have become one. So, Dhamma is saying Adhuna. Now they have become one. In this verse, he says, Adhuna, now. Why? Because Swami Dhanapada himself is writing this verse. He's an associate of Mahaprabhu. And he says, just see, oh, now those two have become one. In what form? Chaitanya Kyam Bhagavatam Adhuna. In the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, Radha Bhavajiti Suvalitamami Krishna Swarupam. Who is Sri Chaitanya Mahaprabhu? Now, that pranayamite of Krishna in the form of Radhika has again become one with him, and it is Krishna himself who has appeared, but not with the Garuda, the Prem Vishai. But that same Krishna has now appeared, Radha Bhava Jiti Subalita. That same Krishna has appeared, not with the Vishai Jatiya Prem, but rather the Garuda Ashray Shinati Radhika. So he is adorned with her bhav, her maha bhav, and her very beautiful golden complexion. So Sri Advaita Acharya, he called Krishna to this world to distribute this prem. Why? Because before the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, four acharyas came in this world: Ramanuja Acharya, Sri Madhvacharya, Sri Nipaditya, and Sri Vishnuswami. And they distributed bhakti, but they did not distribute bhakti rasa. So Advaita Acharya called Krishna himself to appear, and in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he distributed bhakti rasa, especially Raja Prem Bhakti Rasa. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, how did he manifest his bhakti rasa in the world? When he met with Sri Rupa Goswami Pai, at that time he told him, Parapara Sunu Gavir Bhakti Rasa Sindhu Toma Chakri Kitari Kamiya Kavindu. The ocean of bhakti rasa has no shore. It is unlimited. It has no bottom. It is so unlimitedly deep. So I want to describe just one drop. And this one drop of the ocean of bhakti rasa is enough to inundate and to drown the entire world. So Chaitanya Mahaprabhu, he inspired his bhakti rasa in the heart of Sri Rupa Goswami Pai, and it manifested to the world in the form of Sri Ujjwala Hilamani, Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Lalit Mahara, Sri Virat Mahara, Sarva Mahara, and all the granthas of Sri Rupa Goswami Pai and his those in his Anugrahya. Sri Chaitanya Mahaprabhu has made a very important contribution on the basis of the verse Yakamara Mara Sayyidani, which Sri Chaitanya Mahaprabhu is relishing at Sri Ratiyatra Mahotra. Sri Rupa Goswami Pai described Sri Chaitanya Mahaprabhu's inner mood in the verse of Priyasa Yam Krishna Satya Kurukshetra Vilitas. And through the medium of these verses, Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested Parakya Bhav, the mood of paramount love or unbridled love, the conception that Srimati Radhika and Gopis of Vrindavan, they are married to others, and secretly they'll have to leave everything in order to meet with Krishna and serve him. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came here to Vrindavan on the full moon day, and at that time, when he was here in Vrindavan, by only Vipana stimulation of this Vrindavan dharma, gradually his mood of being Krishna began to manifest. But he came to this world to relish the mood of Srimati Radhika. So seeing that by staying in Vrindavan, his three desires would not be fulfilled, he couldn't be left this place, and following the path of Jamuna, he came to Prayag, where he met with Sri Rupa Goswami. And then following the path of the Ganga, gradually came to Kashi, and then he instructed Srila Sanatana Goswami about Samvanda Tattva, Abhinaya Tattva, and Purogya Tattva. Our relationship with Krishna, the process of bhakti, and what is the ultimate goal of life? Sri Satsanatana Gauhari Ki Jai.
Mahamantra.
You forget one point.
Sakhe.
Yes, because one image is there.
Sakhe Kalaya Gauru Mudar. Munas.
What is that?